हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अचानक हुई मिशिका की मृत्यु की खबर सुनकर वेदांश का मूड पहले ही बहुत खराब था। इसके अलावा उसकी माँ ने आखिरी वक्त में भी उसे अपनी बहन का चेहरा तक नहीं देखने दिया। यहाँ तक कि सबके सामने उसकी मौत का इल्ज़ाम भी वेदांश पर ही लगा दिया गया और वेदांश उस वक्त कुछ नहीं बोल पाया। उसे खुद भी नहीं समझ आ रहा था कि क्यों उसने किसी को भी कोई जवाब नहीं दिया और क्यों उसे इतनी तकलीफ़ हो रही थी। क्या सच में वो अपनी बहन से इतना ज़्यादा आत्मीय था, इतना ज़्यादा प्यार करता था? क्योंकि उसे कभी ऐसा नहीं लगा था। वो कभी प्यार दिखाता नहीं था और उसे सब कुछ अपने हिसाब से चलाना पसंद था, हमेशा से ही, बस इसीलिए। लेकिन फिर भी उसने कभी ये नहीं सोचा था कि उसकी बहन उसे इस तरह से हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी इस दुनिया से। वो इसके लिए बिल्कुल भी मानसिक रूप से तैयार नहीं था। उसके लिए ये एक बहुत बड़ी बात थी और अपने पापा के बाद ये दूसरी मृत्यु थी उसकी फैमिली में, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा आघातग्रस्त हो गया था। फिर घर आने के बाद जब उसने प्रतीक को अपने कमरे में देखा तो उसका गुस्सा जैसे सातवें आसमान पर पहुंच गया। लेकिन उस वक्त तो जैसे तैसे प्रतीक वहां से बचकर निकल गया था, लेकिन अभी वो वेदांश के गुस्से से नहीं बच पाया और वेदांश ने उसके सिर पर बंदूक लगा दी थी, क्योंकि अंबिका को वहां कमरे में ना देखकर वो बहुत ही ज़्यादा बौखलाया हुआ था। उसे अंबिका की आदत हो गई थी इतने दिनों से उसे अपने कमरे में देखने की, लेकिन आज वो वहां पर नहीं थी तो वेदांश एकदम ही जैसे पागल सा हो गया था और उसे ऐसा लग रहा था कि अंबिका के कमरे में ना होने के पीछे कहीं ना कहीं प्रतीक का ही हाथ हो सकता है, बस और किसी का नहीं। वेदांश ने गरजते हुए कहा, बोलो क्या किया तुमने उसके साथ? क्यों गए थे तुम मेरे कमरे में और कहाँ है वो अब? अगर मुझे वो नहीं मिली ना तो प्रतीक, समझ लेना तुम्हारा ये आखिरी दिन होगा इस दुनिया में। इतना बोलते हुए वेदांश ने अपनी बंदूक लोड की तो प्रतीक एकदम ही चिल्लाने लगा, नहीं नहीं भैया, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, सच में मैं बस गलती से ही आपके कमरे में पहुंच गया, मैं असल में वहां जाना नहीं चाहता था, लेकिन वो बस अचानक से दरवाज़ा खुला था और मैं। इतना बोलते हुए उसने अपने दोनों हाथ चेहरे पर रख लिए और लगातार अपना सिर नहीं महला रहा था और चिल्लाते हुए उसकी आवाज़ काफ़ी तेज़ हो गई, लेकिन वेदांश को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो उसका घर था, वहाँ पर उसके अलावा और किसी की कोई नहीं सुनता, इसलिए अगर प्रतीक की आवाज़ कोई सुन भी लेता तो कोई भी उसके मदद के लिए वहाँ पर नहीं आने वाला था। वेदांश को अच्छी तरह पता था कि उसका बॉडीगार्ड या उसके घर का कोई यहाँ पर नहीं आने वाला, लेकिन दरवाज़ा खुला हुआ था तो एकदम से प्रतीक की माँ यानी कि उसकी बुआ वहाँ पर अंदर आई और उन्होंने जब वेदांश को प्रतीक पर बंदूक ताने हुए देखा तो उनकी आंखें हैरानी से इतनी बड़ी हो गईं जैसे कि अभी बाहर निकलकर ज़मीन पर गिर जाएंगी। बुआ जी को अपनी आंखों के सामने का नज़ारा देखकर ज़रा सा भी भरोसा नहीं हुआ, लेकिन अपने बेटे पर ऐसे बंदूक तनी हुई देखकर बुआ तेज़ आवाज़ में चिल्लाते हुए अंदर आई और वेदांश और प्रतीक के बीच खड़ी होते हुए बोली, वेदांश ये क्या कर रहे हो तुम बेटा? क्या हुआ? इससे कोई गलती हुई है क्या? इसे माफ़ कर दो, ऐसे अपने भाई पर बंदूक नहीं तानता। इतना बोलते हुए बुआ जी ने अपना हाथ बढ़ाकर वेदांश के हाथ में पड़ी हुई बंदूक को साइड में करने की कोशिश की तो वेदांश ने एकदम ही उनका हाथ झटक दिया और गुस्से में उनकी तरफ देखता हुआ बोला, हट जाइए मेरे रास्ते से, मैं नहीं देखूंगा कि मेरे सामने कौन है कौन नहीं, मेरा पहले ही दिमाग खराब है और आपको सबको अच्छी तरह से पता है कि मैंने मना किया हुआ है, मेरे कमरे में किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है, लेकिन अभी जब मैं घर वापस आया तो आपका ये बेटा मेरे कमरे में क्या कर रहा था? पूछिए इससे और अगर कोई जवाब नहीं है इसके पास तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इसकी वजह से। अपने बेटे की तरफ देखकर उसे समझाते हुए बुआ जी ने कहा, क्या प्रतीक, प्रतीक तू वेदांश के कमरे में क्या करने गया था और क्यों? तुझे पता है ना उसे नहीं पसंद कोई भी उसके कमरे में आए जाए, तो फिर क्यों गया था तू? जल्दी से माफ़ी मांग अपने भाई से और बोल के ऐसा कभी भी नहीं करेगा दोबारा। इतना बोलते हुए प्रतीक की माँ ने उसकी तरफ देखा तो उसने जल्दी जल्दी अपना सिर हिलाया और वेदांश के सामने हाथ जोड़कर बोला, भाई भाई मुझे माफ़ कर दो, मैं मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती, मुझे आपके कमरे में नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मेरे यकीन मानिए वहाँ पर कोई भी नहीं था, मैंने किसी को भी नहीं देखा, हो सकता है वो लड़की पहले ही निकल गई हो, मुझे कुछ भी नहीं पता उसके बारे में। इतना बोलते हुए प्रतीक ने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं और सिर भी नीचे झुकाया हुआ था, लेकिन वेदांश अभी भी उसी तरह गुस्से भरी नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। उसने एकदम ही प्रतीक का कॉलर पकड़ लिया और कहा, मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो, और अगर मुझे सच का पता चला और इन सब में तुम्हारा कोई हाथ हुआ ना, तो समझ लेना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वेदांश के ऐसी धमकी देने पर उसकी बुआ ने लगभग रोते हुए कहा, माफ कर दो बेटा, उसे माफ कर दो, छोटा बच्चा है वो। प्रतीक की आंखों में भी खौफ एकदम साफ नजर आ रहा था और उसे देखकर भी ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी वक्त रो देगा। और तभी वेदांश ने एक झटके से उसका कॉलर छोड़ते हुए उसे पीछे की तरफ धकेल दिया और तुरंत ही उनके कमरे से निकलकर बाहर चला गया। प्रतीक एकदम ही लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया और उसकी माँ तुरंत ही उसे संभालने के लिए उसकी ओर भागी। वहीं दूसरी तरफ वेदांश सीधा अपने कमरे के अंदर आया और अंबिका कहीं भी नहीं मिल रही थी, तो फ्रस्ट्रेशन में उसने अपने सिर के बालों को पकड़कर पीछे की तरफ खींचा और तेज आवाज में चिल्लाया, अंबिका कहाँ हो तुम? पता नहीं क्यों उसकी आंखों में भी एक अजीब सा डर साफ नजर आ रहा था, जिसे छिपाने की भी वो पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन छिपा नहीं पा रहा था, क्योंकि फिलहाल अभी उसे कमरे में वो अकेला था। और उसने इधर उधर देखा, तभी उसकी नज़र वॉशरूम की तरफ गई और उसने देखा कि वॉशरूम का दरवाज़ा बंद था। तो वेदांश एकदम से उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ा और उसने दरवाजे पर हाथ रखा तो पाया कि दरवाज़ा अंदर से लॉक था। और ये बात समझ आते ही उसने अपने आप से कहा, क्या अंबिका वॉशरूम के अंदर है? लेकिन इतनी देर से, मुझे तो आए हुए काफी टाइम हो गया है, अभी तक निकली क्यों नहीं? ये ठीक तो है ना, कहीं इसे कुछ। इतना बोलते हुए वेदांश एकदम से वॉशरूम के दरवाजे पर अपना हाथ मारते हुए बोला, अंबिका अंबिका क्या तुम अंदर हो? दरवाजा खोलो। अंबिका के कानों में सिर्फ दरवाजे पर हाथ मारने की आवाज पड़ रही थी, वेदांश की आवाज उसे सुनाई नहीं दी और वह एकदम ही घबराकर पीछे हट गई, क्योंकि उसे लगा था कि अभी भी वह लड़का वहां से गया नहीं है। वह नहीं जानती थी कि वह लड़का प्रतीक है, इसलिए उसके मन में अभी भी उसके खिलाफ डर था। इसलिए वह तुरंत ही अपनी जगह से उठकर पीछे जाने लगी और घबराकर दरवाजे की तरफ ही देख रही थी। तभी वेदांश को याद आया कि उसकी आवाज़ वॉशरूम के अंदर नहीं जाएगी, तो वह तुरंत ही इधर उधर देखने लगा और फिर उसने बेड के साइड का एक दराज खोला तो उसमें एक बड़ी सी चाबी थी, वो शायद मास्टर की थी। उसने जैसे ही वो चाबी उठाई और दरवाजे पर लगाई, तुरंत ही दरवाज़ा खुल गया। वेदांश ने पूरा दरवाज़ा अंदर की तरफ खोलने से पहले कहा, तुम नहा तो नहीं रही हो ना अंबिका, तुम ठीक तो हो ना?
थोड़ा सा दरवाज़ा खुलते ही जैसे अंबिका के कानों में वेदांश की आवाज़ पड़ी, उसने जैसे राहत की सांस ली और दरवाज़े का हैंडल पकड़कर पूरा दरवाज़ा अपनी तरफ खींचा और एकदम से ही निकलकर बाहर आ गई। और जैसे ही उसने वेदांश को देखा, पता नहीं क्यों उसे काफ़ी सुरक्षित महसूस हुआ और वो भागकर तुरंत ही उसके गले लग गई। लेकिन वो बहुत घबराई हुई थी और अभी भी रो रही थी और उसकी आँखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वेदांश को समझ नहीं आया कि आखिर अंबिका को क्या हुआ है, लेकिन उसने भी धीरे से अंबिका की पीठ पर अपना हाथ रख लिया और उसे अपने गले से लगने दिया, क्योंकि उसकी हालत ठीक नहीं लग रही थी और वेदांश उसे ऐसे देखकर कंफ्यूज हो गया। क्रमशः क्या अंबिका बताएगी वेदांश को प्रतीक के बारे में, लेकिन वो उसे पहचानती नहीं है और ना ही उसका नाम जानती है, तो फिर कैसे बताएगी? और क्या वेदांश यकीन करेगा उसकी बात पर? उसके बाद वो क्या करेगा प्रतीक के साथ? क्या उसे जान से मार देगा? और क्यों वो वेदांश के गले लगी? क्यों उसे वेदांश के होने पर अच्छा महसूस हो रहा है?